डॉक्टर डेव मैथ्यूसन, न्यू टेस्टामेंट लिटरेचर, व्याख्यान 32, दो पीटर और जूड। 2024 डेव मैथ्यूसन और टेड हिल्डेब्रांट। यह न्यू टेस्टामेंट हिस्ट्री एंड लिटरेचर में डॉक्टर डेव मैथ्यूसन, दो पीटर और जूड पर व्याख्यान 32 था। आइए आगे बढ़े और शुरुआत करें। मैं जानता हूं कि यह बहुत अच्छा दिन है, इसमें रहना कठिन है, इसलिए मैं इसे आपके समय के लायक बनाऊंगा। यदि आप आते हैं तो मेरे पास यहाँ एक कागज का टुकड़ा होगा, आप उस पर अपना हस्ताक्षर करें और कक्षा के बाद आपको यहाँ रहने के लिए अतिरिक्त श्रेय मिलेगा। मैं वफादार अवशेष को पुरस्कृत करने के लिए कभी कभार ऐसा करता हूँ। फिर भी ठीक है, उसके बाद मैं अपना मन नहीं बदल सकता, मुझे इससे गुजरना होगा। ठीक है, मैं आज जो करना चाहता हूँ वह यह है कि हम वास्तव में अंत के बहुत करीब पहुँच रहे हैं। मैं प्रकाशित वाक्य को थोड़ा विस्तार से देखने के लिए कुछ दिन छोड़ना चाहता हूँ, कम से कम एक दिन शायद, हालांकि स्पष्ट रूप से हम उसके लिए कुछ समय समाप्त हो रहा है, लेकिन मैं आज दो दस्तावेज देखना चाहता हूँ। यह एक और समय है जब हम विहित क्रम से बाहर जाएंगे, अर्थात हम दो पुस्तकों को देखेंगे, इसलिए एक जो नए नियम में उनके विहित क्रम में एक दूसरे से अलग है, लेकिन दो पुस्तकें जो एक दूसरे से बहुत मिलती जुलती हैं, सुझाव दें कि उनके बीच किसी प्रकार का रिश्ता है, जैसा कि हमने कुलुस्सियों और फिलेमोन के साथ किया था। हमने सुझाव दिया कि उनके बीच घनिष्ठ संबंध था, संभवतः उन्हें एक ही स्थान पर संबोधित किया गया था, एक ही समय के दौरान भेजा गया था, और यदि आपको याद हो तो नया नियम वैसे भी कालानुक्रमिक रूप से व्यवस्थित नहीं है, पुस्तकें उस क्रम में नहीं हैं जिस क्रम में वे आवश्यक रूप से लिखी गई थीं। यहाँ तक कि जब आप एक और दो कुरिन्थियों या एक और दो थिस्सलुनीकियों, एक और दो पत्रस, एक और दो तीमुथियुस को देखते हैं, तो हम आवश्यक रूप से यह नहीं मान सकते कि यही है जिस क्रम में वे लिखे गए थे। पॉल ने अपने पत्र के शीर्ष पर एक और दो तीमुथियुस नहीं लिखा, या पत्रस ने एक और दो पत्रस नहीं लिखा। ये वे पदनाम हैं जो हमने उन्हें उस क्रम के अनुसार दिए हैं जिसमें वे नए नियम में होते हैं, जो मोटे तौर पर कई बार लंबाई के अनुसार होते हैं या तार्किक रूप से, जरूरी नहीं कि कालानुक्रमिक रूप से हों। लेकिन कई बार ऐसा होता है, भले ही पत्रों को कालानुक्रमिक रूप से व्यवस्थित नहीं किया गया हो, पत्रों में ऐसे सुराग हो सकते हैं जो हमें यह निर्धारित करने में मदद करते हैं कि वे कब लिखे गए होंगे, और हम आज उन उदाहरणों में से एक को दूसरे पीटर के साथ देखेंगे और जूड। जूड उन पत्रों में से एक है जिसके बारे में कम से कम मुझे याद नहीं आ रहा है कि मैंने आखिरी बार किसी पर उपदेश देते हुए कब सुना था या जूर पर उपदेश दिया था। इसके संदर्भ या उस जैसे किसी भी पत्र की तो बात ही छोड़ दें। जब हम इसे थोड़ा विस्तार से देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि ऐसा क्यों है। लेकिन आइए प्रार्थना के साथ शुरुआत करें और फिर हम दूसरे पीटर और जूर को देखेंगे। पिता, हमें सेमेस्टर में इस बिंदु तक लाने के लिए धन्यवाद, और जैसा कि हम पिछले कुछ हफ्तों का अनुमान लगा रहे हैं, भगवान हम ऊर्जा और सहन शक्ति के लिए प्रार्थना करते हैं, और भगवान दृढ़ रहने की क्षमता और बहुत अधिक थका हुआ और हतोत्साहित और थका हुआ महसूस न करने की प्रार्थना करते हैं। हम जो कुछ भी कर रहे हैं उसे हम अच्छी तरह से पूरा करने में सक्षम होंगे, और भगवान मैं प्रार्थना करता हूँ कि अच्छे मौसम और अन्य जगहों के बावजूद जहाँ हम जाना चाहते हैं और जो चीजें हम करना चाहते हैं, आप हमें इस संक्षिप्त समय के लिए अपना ध्यान केवल एक छोटे से हिस्से पर केंद्रित करने में मदद करेंगे जो हम कर रहे हैं। कबूल करना हमारे लिए आपका रहस्योद्घाटन है। यीशु के नाम पर हम प्रार्थना करते हैं, तथास्तु। ठीक है, दूसरा पीटर। मेरा कंप्यूटर एकदम खराब हो गया। दूसरा पीटर फिर से उन दस्तावेजों में से एक है जिसे पॉल के कई पत्रों की तरह, जिन्हें हमने देखा है, वर्गीकृत किया जा सकता है, और यह महत्वपूर्ण है जब आप परीक्षाओं के संदर्भ में सोच रहे हैं, खासकर अंतिम परीक्षा के बारे में। मेरे बहुत से प्रश्न कभी कभी आपसे न्यू टेस्टामेंट के पत्रों या दस्तावेजों को जोड़ने के लिए कहते हैं कि उनमें एक दूसरे के साथ क्या समानता हो सकती है। दूसरा पीटर उन दस्तावेजों में से एक है जो पॉल के कुछ पत्रों के साथ विशेषताएं साझा करते हैं। हमने उस पते को किसी प्रकार की झूठी शिक्षा या किसी प्रकार की विचलित शिक्षा के रूप में देखा है, जैसे कि हमने एक और दो तीमुथियुस, कुलुस्सियों और गैलाटियन जैसी पुस्तकों को देखा है। पॉल उस सुसमाचार के लिए खतरों से निपट रहा था जिसका उसने प्रचार किया था। अब दो पीटर में एक पीटर के विपरीत, जो एक बहुत ही अलग स्थिति को संबोधित कर रहा था, दो पीटर उन शिक्षकों की समस्या को संबोधित कर रहा है जो मूल रूप से हमारे द्वारा देखे गए कुछ अन्य पत्रों की तुलना में थोड़ा अलग थे। जो शिक्षक थे एक प्रकार के एंटीनोमिनिज्म को बढ़ावा देना, यानी एक ऐसी शिक्षा को बढ़ावा देना जो किसी व्यक्ति को एक निश्चित तरीके से जीवन जीने के किसी भी अधिकार या जिम्मेदारी से मुक्त कर देती है। दो पत्रस में हम जो कुछ उदाहरण देखते हैं उनमें से हम यह भी देखेंगे कि वे इस पर सवाल उठाकर इसे बढ़ावा दे रहे थे कि भगवान वास्तव में वापस आकर न्याय करने वाले थे। तो जिन तरीकों से उन्होंने ऐसा किया उनमें से एक है प्रश्न पूछना। हम प्रेरितों और पुराने नियम के भविष्यवक्ताओं की शिक्षा देखेंगे। यदि आप अपने पुराने नियम के सर्वेक्षण वर्ग को याद करते हैं तो भविष्यवक्ताओं के प्रमुख संदेशों में से एक मोक्ष और न्याय दोनों में से एक था, कि भगवान वापस आएंगे और पृथ्वी का न्याय करेंगे। ऐसा लगता है कि ये शिक्षक दो पत्रस में उनकी जो भी सटीक पहचान हो विशेष रूप से इस तथ्य पर सवाल उठा रहे थे कि भगवान वापस लौटने और पृथ्वी का न्याय करने जा रहे थे। इसलिए यदि ऐसा मामला है तो वे जिस प्रकार की जीवन शैली चाहते हैं जी सकते हैं, और विशेष रूप से वे किसी भी सुख में लिप्त हो सकते थे, विशेषकर यौन अनैतिकता में, बिना किसी डर के कि भगवान वापस आकर न्याय करने वाले थे। तो यह प्राथमिक मुद्दा या समस्या प्रतीत होती है। यही वे शिक्षक हैं जो इस तथ्य पर सवाल उठा रहे थे कि भगवान वास्तव में वापस आने वाले हैं और मानवता का न्याय करेंगे और दुष्टता और पाप का न्याय करेंगे, और यदि वह नहीं है तो वे अपना जीवन अपनी इच्छानुसार जीने के लिए स्वतंत्र हैं। वे किसी भी प्रकार की यौन अनैतिकता या अपनी इच्छानुसार किसी भी सुख में लिप्त होने के लिए स्वतंत्र हैं, क्योंकि भगवान वापस लौटकर उनका न्याय नहीं करने जा रहे हैं। और ऐसा लगता है कि लेखक इसी मुद्दे या समस्या का समाधान कर रहा है। अब समस्या यह है कि जिन नोट्स का मैं अनुसरण करने जा रहा हूं वे ओवरहेड पर हैं, लेकिन मुझे एक पल के लिए दो पीटर की शैली या साहित्यिक प्रकार के बारे में बात करने दीजिए। दो पत्रस दो तीमुथियुस की तरह एक अंतिम वसीयत और वसीयतनामा जैसा प्रतीत होता है। यहां अधिक अतिरिक्त क्रेडिट अंक हैं। जैसा कि हमने कहा था, दो पीटर वास्तव में पॉल की आखिरी वसीयत और अपने पाठकों के लिए वसीयतनामा था, जहां हमने एक वसीयतनामा कहा था जो पहली शताब्दी में एक सामान्य साहित्यिक प्रकार का था और पहली शताब्दी तक और उस समय के दौरान अग्रणी था। वसीयतनामा मूलतः एक मरते हुए नायक के अंतिम शब्द थे। कोई जो मरने के लिए तैयार था वह उनके अंतिम निर्देश पर अमल कर रहा था, और दो पीटर भी उससे मिलता जुलता है, और विशेषकर श्लोक 12 से 15 तक। इन श्लोकों को सुनिए। पत्रस कहता है, इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम्हें ये बातें स्मरण कराता रहूं, यद्यपि तुम इन्हें पहले से ही जानते हो और जो सत्य तुम्हारे पास आया है उस पर स्थिर हो। मुझे लगता है कि जब तक मैं शरीर में हूं तब तक आपकी याददाश्त को ताजा करना सही है, क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरी मृत्यु या मेरा प्रस्थान जल्द ही होगा, जैसा कि वास्तव में हमारे प्रभु यीशु मसीह ने मुझे स्पष्ट कर दिया है। और मैं हर संभव प्रयास करूंगा ताकि मेरे जाने के बाद आप किसी भी समय इन बातों को याद कर सकें। उस कथन में एक वसीयतनामा के सभी लक्षण मौजूद हैं। ये एक मरते हुए नायक के आखिरी शब्द हैं जब नायक मौत का सामना करता है। अब वह अपने विदाई निर्देशों को अपने पाठकों को यह याद दिलाने के लिए देता है कि उसने उनसे क्या कहा है और उन्हें क्या सिखाया है। और इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम वहां चलें। ठीक है। तो पत्रस एक तरह से दो तीमुथियुस की तरह एक वसीयतनामा लिख रहा है। हम एक क्षण में इस पर लौटेंगे। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, झूठे शिक्षकों के पीछे प्राथमिक शक्ति यह है कि वे पाठकों को भविष्य के निर्णय से इनकार करने के लिए सिखाने या समझाने की कोशिश कर रहे हैं, या कि भविष्य में कोई निर्णय नहीं होगा, इसलिए वे जैसे चाहें वैसे रह सकते हैं, किसी भी प्रकार का अनुसरण कर सकते हैं, अनैतिकता जो वे चाहते हैं। तो दो पत्रस का उद्देश्य यह है कि पत्रस अपने पाठकों को मुख्य रूप से धर्मग्रंथ और इस तथ्य पर विश्वास बनाए रखते हुए दुनिया में पवित्र जीवन जीने के लिए प्रोत्साहित करता है कि भगवान आने वाले हैं और न्याय करेंगे और बचाएंगे। तो एक अर्थ में पीटर का संदेश बहुत भविष्य सूचक है। इससे मेरा मतलब है कि वह अपने पाठकों को यह याद दिलाकर प्रेरित करने की कोशिश करता है कि जो लोग वफादार हैं उनके लिए मुक्ति और जो इनकार करते हैं उनके लिए न्याय का संदेश दिया जाए। दूसरी बात जो इसके बारे में महत्वपूर्ण है और यह जूड में फिर से सामने आएगी वह यह है कि हमने इसे कई बार देखा है, जब हम आज झूठी शिक्षा के बारे में सोचते हैं तो हम आम तौर पर बौद्धिक या धार्मिक दृष्टि से सोचते हैं कि कोई व्यक्ति झूठी शिक्षा में लगा हुआ है वह है जो धार्मिक रूप से भटक जाता है या वह जो स्पष्ट शास्त्रीय शिक्षा से भटक जाता है। हालांकि यह दिलचस्प है कि बाइबल के लेखक नैतिक विचलन में भी उतनी ही रुचि रखते थे। और हम दो पत्रस में देखने जा रहे हैं, दो पत्रस न केवल इस बात से चिंतित है कि वे सही चीजों पर विश्वास नहीं करते बल्कि वे गलत तरीके से कार्य भी करते हैं। या जैसा कि कुछ लोग कहेंगे कि वह न केवल रूढ़िवाद से बल्कि रूढ़िवादिता से भी चिंतित है। वह झूठी शिक्षा उतनी ही पथभ्रष्ट जीवन शैली है जितनी की शिक्षण का पथभ्रष्ट ढंग। तो आपके नोट्स के तहत यही उद्देश्य होगा। अब जिस तरह से पत्रस अपना उद्देश्य पूरा करता है वह यह है। ऐसा प्रतीत होता है कि पीटर अपने पत्र के बाकी हिस्सों में इन शिक्षकों की आपत्तियों को उठाने जा रहे हैं। फिर से याद रखें कि ये शिक्षक इस तथ्य पर सवाल उठा रहे हैं कि भगवान न्याय करने वाले हैं और इसलिए वे अपनी इच्छानुसार जीवन जी सकते हैं। ऐसा लगता है कि जो होने जा रहा है वह यह है कि पत्रस इस तथ्य पर आपत्तियों की एक श्रृंखला उठाने जा रहा है कि मसीह वापस नहीं आने वाला है और भगवान वापस आकर न्याय नहीं करने वाला है। और पीटर इन आपत्तियों का उत्तर देने जा रहा है। तो आपत्ति नंबर एक, और फिर से आप देखेंगे कि अध्याय और छंद दो पत्रस की संपूर्णता से मेल नहीं खाते हैं, लेकिन मैं केवल प्रत्येक खंड के मूल पर ध्यान केंद्रित कर रहा हूं। तो हम दो पत्रस के माध्यम से आगे बढ़ेंगे और केवल उस आपत्ति को देखेंगे जो झूठे शिक्षक मसीह के न्याय करने के लिए आने पर उठा रहे थे और फिर उस पर पत्रस की प्रतिक्रिया। तो पहली आपत्ति यह थी कि प्रेरित अध्याय एक श्लोक 16 से 19 में मिथक सिखा रहे थे। इसलिए इन छंदों में फिर से पीटर आवश्यक रूप से शिक्षकों को उद्धृत नहीं कर रहा है, बल्कि मुझे लगता है कि उनकी आपत्तियों के मूल में जो कुछ है उसका सारांश दे रहा है। इसलिए वह कहते हैं, क्योंकि जब हमने तुम्हें हमारे प्रभु यीशु मसीह की शक्ति और आगमन के बारे में बताया था तो हमने चतुराई से गढ़ी गई मिथकों का पालन नहीं किया था, बल्कि हम उनकी महिमा के प्रत्यक्षदर्शी थे। अब यह वाक्यांश कि हमने चतुराई से तैयार किए गए मिथकों का पालन नहीं किया शायद शिक्षकों के आरोपों में से एक का सारांश है। यानी पीटर और पॉल और अन्य जैसे प्रेरित केवल मिथक सिखा रहे थे। इसके बारे में महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रेरितों के संदेशों में से एक यह था कि वास्तव में यीशु एक दिन वापस आने वाला था और वह दुनिया का न्याय करने वाला था। तो प्रेरितिक संदेश को बदनाम करके कि मसीह वापस आने वाला था, जो कि हमारे पहले से ही लेकिन अभी तक तनाव का हिस्सा नहीं है, प्रेरितों द्वारा यह सिखाते हुए कि मसीह एक दिन न्याय करने के लिए वापस आने वाला है, उस पर सवाल उठाते हुए झूठे शिक्षक अपने एंटीनोमिनिज्म को बढ़ावा देंगे, अर्थात वे किसी भी प्रकार की आचार संहिता या नैतिक आचरण के लिए जिम्मेदार नहीं हैं। इसलिए शिक्षक प्रेरितिक शिक्षा पर सवाल उठा रहे हैं। पत्रस का उत्तर नहीं है, प्रेरित परमेश्वर की महिमा के प्रत्यक्षदर्शी थे। अब सुनिए, ये तो दिलचस्प है। पत्रस कहता है, क्योंकि उसने मसीह के विषय में कहा कि यीशु ने परमेश्वर पिता से आदर और महिमा पाई जब वह तेज तेज आवाज उस तक पहुंची और कहा, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूं। जब हम पवित्र पर्वत पर उसके साथ थे तो हमने स्वयं स्वर्ग से यह आवाज सुनी। वह घटना किस ओर इशारा कर रही है? क्या किसी को याद है? अब आपको सुसमाचार की ओर वापस जाना होगा। किसी प्रेरित ने पहाड़ पर चढ़कर यह शब्द सुना कि यह मेरा प्रिय पुत्र है, उसकी सुनो, मैं उससे बहुत प्रसन्न हूं। रूपांतरण मैथ्यू, मार्क और ल्यूक सभी रूपांतरण को दर्ज करते हैं। एक समय जब यीशु पीटर, जेम्स और जॉन के साथ एक पहाड़ पर गए और उनके सामने रूपांतरित हुए, बदल गए और एक बादल में ढक गए, यह एक अलौकिक घटना थी और उन्होंने स्वर्ग से यह शब्द सुना कि यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अति प्रसन्न हूँ। यह यशायाह की पुस्तक में से निकला है। आपको क्या लगता है, पीटर ने ऐसा उद्धरण क्यों दिया? यह कैसी प्रतिक्रिया है? इससे यह कैसे साबित होगा कि जब प्रेरितों ने कहा कि यीशु वापस आकर न्याय करेगा तो वे झूठ नहीं सिखा रहे थे या मिथक नहीं सिखा रहे थे? यह कैसे सिद्ध होता है? पीटर इस घटना का जिक्र क्यों करेगा? यह सुसमाचारों में एक रूपांतरण घटना है। वास्तव में यह सभी प्रकार की पुराने नियम की कल्पनाओं से भरी हुई है। यह मूल रूप से एक झलक थी। यह लगभग एक पूर्वरूपण या समय से पहले की एक झलक थी जिसमें यीशु अपनी पूरी महिमा के साथ अपने राज्य में न्याय करने और बचाने के लिए आ रहे थे। तो पत्रस द्वारा इसे उद्धृत करने का कारण यह है, नहीं, हम रूपांतरण के समय परमेश्वर की महिमा के प्रत्यक्षदर्शी थे, अर्थात हमने एक झलक देखी, हमारे पास एक स्नैपशॉट या एक झलक थी कि जब मसीह अपनी सारी महिमा में वापस आएगा तो कैसा होगा उसके राज्य को स्थापित करने और न्याय करने और बचाने के लिए। तो उन्हें उस समय की एक झलक मिली जो अभी तक मौजूद नहीं थी, जब उन्होंने यीशु को अपनी सारी महिमा और शक्ति में परमेश्वर के पुत्र के रूप में परिवर्तित होते देखा था, जो वापस आएगा और न्याय करेगा और मोक्ष प्रदान करेगा। तो पत्रस कहता है, नहीं, हम इस तथ्य के प्रत्यक्षदर्शी थे कि यीशु वापस आकर न्याय करने वाला है। जब प्रेरितों ने सोचा कि मसीह वापस आकर न्याय करेगा तो वे मिथक या झूठ नहीं सिखा रहे थे, बल्कि यह एक प्रत्यक्षदर्शी पर आधारित था। उन्होंने स्वयं ईसा मसीह को देखा, एक स्नैपशॉट की तरह, ईसा मसीह की एक पूर्वाग्रहपूर्ण झलक जो उनकी सारी महिमा में आ रही थी जब सुसमाचार में उनका रूपांतर उस पहाड़ पर किया गया था। आपत्ति संख्या दो, भविष्यवक्ता बिल्कुल गलत थे। अध्याय एक और श्लोक 20 और 21। सबसे पहले पीटर कहते हैं, आपको यह समझना चाहिए कि पवित्र शास्त्र की कोई भी भविष्यवाणी किसी की अपनी व्याख्या का विषय नहीं है, क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी कभी भी मानवीय इच्छा या निर्णय से नहीं आई है, बल्कि पुरुषों और महिलाओं ने पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर ईश्वर से बात की है। अब सबसे अधिक संभावना है कि यह झूठे शिक्षक की आपत्ति का जवाब या सारांश है, और यह है कि भविष्यवक्ता बिल्कुल गलत थे। फिर जब आप वापस जाते हैं और पुराने नियम के भविष्य सूचक ग्रंथों को पढ़ते हैं तो भविष्यवक्ताओं इजेकील और यिर्मयाह यशायाह वगैरह की एक सामान्य विशेषता यह है कि उन्होंने एक ऐसे दिन की भी कल्पना की थी जब भगवान हस्तक्षेप करेंगे और अपना राज्य स्थापित करेंगे और लाएंगे मोक्ष और न्याय दोनों। अब भविष्यवक्ताओं पर प्रश्नचिन्ह लगाकर झूठे शिक्षक उनके न्याय के संदेश पर प्रश्नचिन्ह लगा रहे थे। फिर यदि भविष्यवक्ता गलत थे और इसलिए कोई निर्णय नहीं है, और यदि कोई निर्णय नहीं है तो आप जैसे चाहें वैसे जी सकते हैं। हम अपने अनैतिक कार्यों के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। पीटर की प्रतिक्रिया, जैसा कि हमने अभी पढ़ा, नहीं है। भविष्यवक्ता स्वयं नहीं बोल रहे थे, वे गलत नहीं थे, वे केवल चतुराई से तैयार की गई भविष्यवाणियां नहीं थीं, बल्कि इसके बजाय वे पुरुष और महिलाएं थीं, और वे भगवान द्वारा गलत नहीं थे। धर्मशास्त्री अक्सर भविष्यवक्ताओं को ईश्वर के मुखपत्र के रूप में वर्णित करते हैं, और यह उन ग्रंथों में से एक है जिनसे उन्हें यह विचार मिलता है। हालांकि उनकी अपनी शैली और संचार इसमें शामिल था, पीटर ने यह स्पष्ट कर दिया कि अंततः ईश्वर की आत्मा भविष्यवक्ताओं को न्याय और मुक्ति के इस संदेश को बोलने के लिए प्रेरित कर रही थी। इसलिए जब भविष्यवक्ताओं ने कहा कि भगवान बचाने और न्याय करने के लिए वापस आ रहे हैं, तो उन पर भरोसा किया जाना चाहिए, क्योंकि पतरस का कहना है कि उनका संदेश ऐसा नहीं है जो उनके स्वयं के निर्णय और मानवीय इच्छा से है। यह उनका अपना काम नहीं है, बल्कि वे हैं एक संदेश का प्रचार कर रहे हैं जिसे प्रचार करने के लिए परमेश्वर की आत्मा ने उन्हें प्रेरित किया है। इसलिए यदि भविष्यवक्ता सही और सही थे तो उनका संदेश की निर्णय है सही है, और इसलिए यह मायने रखता है कि पाठक कैसे रहते हैं। अत आपत्ति क्रमांक दो का उत्तर दिया गया। आपत्ति क्रमांक तीन, फैसला ही नहीं होगा। अध्याय दो में उस पर पीटर की प्रतिक्रिया है। मैं इस खंड को नहीं पढ़ूंगा, लेकिन मूल रूप से ऐसा प्रतीत होता है कि शिक्षक केवल यह तर्क दे रहे थे कि यह तार्किक और सैद्धांतिक रूप से असंभव और व्यावहारिक रूप से असंभव है कि निर्णय लिया जाएगा। अध्याय दो में पीटर जो करता है वह यह है कि पीटर वास्तव में पुराने नियम की कई कहानियां एकत्रित करता है। यदि आप वापस जाएं और पीटर दो पढ़े तो आप पुराने नियम से एक के बाद एक कहानी देखेंगे, लगभग पुराने नियम के सर्वेक्षण की तरह। लेकिन यह क्या है? यह इस बात की कहानी है कि कैसे ईश्वर ने इसराइल के इतिहास में हस्तक्षेप किया और न्याय किया, और आप ऐसा करने के लिए पीटर का उद्देश्य देख सकते हैं। वह कह रहा है, नहीं, इसकी संभावना नहीं है कि ईश्वर इसका न्याय करेगा। यह सैद्धांतिक रूप से असंभव नहीं है। परमेश्वर ने अतीत में ऐसा किया है। इसराइल के इतिहास पर नजर डालें। परमेश्वर ने अतीत में न्याय किया है, तो यह पूरी तरह से कल्पना योग्य है, और यह निश्चित है कि वह भविष्य में निर्णय करेगा। इसलिए एक बार फिर झूठे शिक्षक निर्णय की व्यवहार्यता पर सवाल उठाकर गलत हैं। पीटर का कहना है कि किसी को केवल पुराने नियम को देखने की जरूरत है कि भगवान ने अतीत में न्याय करने के लिए अक्सर हस्तक्षेप किया है, और ऐसा ही वह भविष्य में भी करेगा। अध्याय तीन में आपत्ति संख्या चार, श्लोक एक से दस तक झूठे शिक्षक यह भी कहते दिख रहे हैं कि तथ्य यह है कि भगवान ने देरी की है। यह तथ्य कि भगवान ने न्याय करने के लिए हस्तक्षेप नहीं किया है, यह बताता है कि कोई निर्णय नहीं होने वाला है। दूसरे शब्दों में तथ्य यह है कि मसीह कुछ समय से वापस नहीं आए हैं, प्रेरित के कहने के बावजूद और भविष्यवक्ता ने जो कहा उसके बावजूद, यह दर्शाता है कि कोई निर्णय नहीं होने वाला है। नहीं तो देरी क्यों? पुनः पतरस का उत्तर अध्याय तीन श्लोक एक से दस तक में है। वह कहते हैं कि मैं श्लोक आठ से दस तक से शुरू करूंगा। पतरस कहता है, हे प्रियो, इस एक बात को अनदेखा न करो कि प्रभु में एक दिन हजार वर्ष के बराबर है और हजार वर्ष एक दिन के बराबर हैं। प्रभु अपने वादे के प्रति धीमे नहीं हैं, जैसा कि आप में से कुछ लोग धीमेपन के बारे में सोचते हैं, लेकिन आपके साथ धैर्यवान हैं, नहीं चाहते कि कोई भी नष्ट हो, बल्कि सभी को पश्चाताप करना पड़े। परंतु प्रभु का दिन चोर के समान आएगा, जो स्वयं यीशु द्वारा उपयोग किए गए रूपक का उपयोग करते हुए चोर के समान आएगा, और आकाश बड़े शोर के साथ लुप्त हो जाएगा, और तत्व आग से विलीन हो जाएंगे, और पृथ्वी और जो कुछ उस पर किया जाएगा वह प्रकट या प्रकट किया जाएगा। तो मूल रूप से पीटर का जवाब यह है कि दिलचस्प बात यह है कि हालांकि मैं पूरी तरह से निश्चित नहीं हूं कि एक दिन की भाषा को 1000 साल की तरह क्या कहा जाए, 1000 साल एक दिन की तरह भगवान के लिए धीमापन हमारे लिए धीमेपन के समान नहीं है। लेकिन फिर वह यह भी जोड़ता है कि वह मानवता को पश्चाताप करने का मौका भी दे रहा है। तो चाहे हम इसके बारे में कुछ भी कहें, कम से कम पीटर यह कह रहा है कि देरी होने का एक कारण है। यह इस तथ्य पर सवाल नहीं उठाता कि ईश्वर वास्तव में वापस आकर न्याय करेगा। जो हमें देरी जैसा लग सकता है, जरूरी नहीं कि वह देरी हो। और वह कहते हैं, और वैसे भगवान देरी कर सकते हैं ताकि दूसरों को आने वाले फैसले से पहले पश्चाताप करने का मौका मिल सके। तो यह संक्षेप में 2 पीटर की पुस्तक में मूल रूप से पीटर है। फिर मुझे ऐसा लगता है कि पीटर की रणनीति इन शिक्षकों का मुकाबला करने की है जो इस तथ्य पर सवाल उठाने की कोशिश कर रहे हैं कि भविष्य में निर्णय होने वाला है और इसलिए पाठक जो चाहे कर सकते हैं। पीटर जो करता है वह यह है कि वह झूठे शिक्षकों की आपत्तियों या संभावित आपत्तियों की एक श्रृंखला लेता है और उनका उत्तर देता है और उनका जवाब देता है। तो फिर निष्कर्ष यह है कि यदि ऐसा होने वाला है तो यह मायने रखता है कि पाठक कैसे रहते हैं। इसलिए वह उनसे पूछता है और वह उन्हें इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए पवित्र जीवन जीने के लिए प्रेरित करता है कि वास्तव में एक निर्णय आने वाला है और इन झूठे शिक्षकों से धोखा नहीं खाना चाहिए जो उस निर्णय पर सवाल उठा रहे हैं और सुझाव दे रहे हैं कि वे एंटीनोमियन प्रकार का जीवन जी सकते हैं। 2 पीटर के बारे में कोई प्रश्न? एक और बात है जो मैं इसके बारे में कहना चाहता हूँ और वह यह है कि 2 पीटर उन किताबों में से एक है जिस पर शायद न्यू टेस्टामेंट की किसी भी अन्य किताब की तुलना में अधिक विवाद हुआ है कि क्या पीटर ने इसे लिखा था या नहीं। हालांकि कई लोग इस बात से सहमत होंगे कि पीटर ने 1 पीटर लिखा था, उनमें से कई इस बात से असहमत होंगे कि उसने कई कारणों से 2 पीटर लिखा था। जब आप 1 और 2 पत्रस की तुलना करते हैं, यहाँ तक कि कभी कभी अंग्रेजी अनुवाद में भी, लेकिन विशेष रूप से यदि आप सभी 1 और 2 पत्रस का यूनानी पाठ पढ़ने में सक्षम थे, यदि मैंने आपको 1 यूनानी नया नियम दिया था और आप अपनी क्षमता में काफी पारंगत थे इसे पढ़े, 2 पीटर की तुलना में 1 पीटर के साथ समय बिताना आपके लिए बहुत आसान होगा, मैं इसकी गारंटी देता हूँ। इसलिए कुछ लोगों ने सुझाव दिया है कि लेखन शैली, ग्रीक का प्रकार और शब्दावली 2 पीटर में 1 पीटर से इतनी भिन्न है कि पीटर इसे नहीं लिख सकता था। दूसरा कारण यह है कि हमने अभी कहा कि 2 पत्रस एक वसीयतनामा के रूप में बहुत मिलता जुलता है। हमने कहा कि लगभग 2री शताब्दी या 1ली शताब्दी से कुछ शताब्दियों पहले और 1ली शताब्दी और उसके बाद एक सामान्य रूप था जिसे वसीयतनामा साहित्य के रूप में जाना जाता था, एक वसीयतनामा जो एक मरते हुए नायक के अंतिम शब्दों का रिकॉर्ड है, इसमें नैतिक और कभी कभी भविष्य सूचक या युगांत शास्त्रीय दोनों प्रकार के निर्देश शामिल होंगे जो आपको 2 पत्रस में मिलते हैं। दिलचस्प बात यह है कि इनमें से अधिकतर टेस्टामेंट छद्म नाम वाले होते हैं, उदाहरण के लिए हम बस एक क्षण में बात करेंगे, उदाहरण के लिए हमारे पास द टेस्टामेंट ऑफ अब्राहम, द टेस्टामेंट ऑफ इसहाक, द टेस्टामेंट ऑफ जैकब शीर्षक से कई किताबें हैं। 12 कुलपतियों का वसीयतनामा, मूसा का एक वसीयतनामा, एलिया का एक वसीयतनामा, लेकिन बात यह है कि वे स्पष्ट रूप से उन व्यक्तियों द्वारा नहीं लिखे गए हैं। दूसरे शब्दों में, अब्राहम का वसीयतनामा वास्तव में अब्राहम द्वारा नहीं लिखा गया था, यह अब्राहम के जीवन के बाद किसी ने अब्राहम के नाम पर लिखा था। और धारणा यह है कि पाठकों ने यह समझ लिया होगा, उन्हें यह सोचकर धोखा नहीं दिया गया होगा कि इब्राहिम वास्तव में यह लिख रहा था, बल्कि वे जानते होंगे कि यह सिर्फ एक पहचानने योग्य शैली या साहित्यिक रूप है, और वे जानते होंगे कि इब्राहिम या जिसने यह नहीं लिखा। कुछ लोगों ने तर्क दिया है क्योंकि दो पीटर अन्य वसीयतनामा की तरह एक वसीयतनामा का एक रूप है, यह भी संभवतः छद्मनाम है। यानी पीटर की मृत्यु के बाद अब कोई पीटर के नाम पर लिखता है, जैसे किसी ने इब्राहिम के नाम पर या मूसा के नाम पर या इसहाक के नाम पर लिखा था। अतीत का कोई प्रसिद्ध व्यक्ति अब कोई वर्तमान पाठकों को निर्देश देने के लिए पीटर के नाम पर लिखता है। फिर धारणा यह है कि पाठकों को यह सोचकर धोखा नहीं दिया गया होगा कि पीटर ने वास्तव में यह लिखा था, कि लेखक उन्हें धोखा देने की कोशिश नहीं कर रहा था, बल्कि वह किसी और के नाम पर लिखने की एक मानक साहित्यिक परंपरा का पालन कर रहा था। तो इसी कारण से कुछ लोग सोचते हैं कि दो पीटर छद्म नाम है। दूसरा कारण यह है कि जिसे कुछ विद्वान प्रारंभिक कैथोलिकवाद कहते हैं, वह यह है कि एक ऐसी भावना है जिसे हम पहली और दूसरी शताब्दी के साहित्य से निर्धारित और छेड़ सकते हैं। ईसाई धर्म के भीतर एक आंदोलन जिसे विद्वान प्रारंभिक कैथोलिकवाद कहते हैं। मूल रूप से यह क्या है? यह विश्वास और सोच तथा पहली शताब्दी के अंत में और दूसरी शताब्दी में चर्च की स्थिति के लिए एक लेबल है, क्योंकि इसने जीवन में बसना शुरू कर दिया था और लंबे समय के लिए तैयार होना शुरू कर दिया था। यानी उन्हें एहसास हुआ कि मसीह तुरंत वापस नहीं आने वाले थे, और इसलिए उन्होंने एक तरह से बसना शुरू कर दिया और वे दुनिया में अपना जीवन जीने के लिए तैयार हो गए। वे अधिक संस्थागत हो जाते हैं आदि आदि। लेकिन आमतौर पर यह सोचा जाता है कि प्रारंभिक कैथोलिकवाद और कैथोलिकवाद द्वारा में कैथोलिक चर्च रोमन कैथोलिक चर्च के संदर्भ में उस शब्द का उपयोग नहीं कर रहा हूं जैसा कि हम इसके बारे में सोचते हैं। कैथोलिकवाद एक ऐसा शब्द था जो सामान्य रूप से चर्च सार्वभौमिक अधिक सामान्यतः और व्यापक रूप से चर्च को संदर्भित करता था। इसलिए आप अक्सर पाते हैं, हमने कहा कि किताबों का संग्रह जिसे हम अभी देख रहे हैं उसे अक्सर सामान्य संदेश के रूप में लेबल किया जाता है। उनका दूसरा नाम कैथोलिक धर्म पत्र है क्योंकि वे चर्च को अधिक व्यापक रूप से संबोधित करते हैं, कैथोलिक सार्वभौमिक चर्च। तो प्रारंभिक कैथोलिकवाद से मेरा यही मतलब है, यानी चर्च अब फैल चुका है और अब बसना और खुद को स्थापित करना शुरू कर रहा है। यह अक्सर सोचा जाता है कि प्रारंभिक कैथोलिक धर्म की तीन विशेषताएं हैं, अर्थात पहली शताब्दी के अंत में चर्च और दूसरी शताब्दी ईस्वी में, नंबर एक ईसा मसीह की शीघ्र वापसी में विश्वास का लुप्त होना है। मुझे यह नहीं कहना चाहिए कि यह शीघ्र वापसी का लुप्त होना है, यह विश्वास का लुप्त होना है। तो यह धारणा बहुत प्रारंभिक है, शायद यीशु की शिक्षाओं और प्रेरितों की शिक्षाओं पर आधारित है, जैसे कि हम एक थिस्सलुनीकियों में पढ़ते हैं, चर्च को एक जीवंत उम्मीद थी कि मसीह जल्द ही तुरंत वापस आ रहा था। लेकिन अब जैसे जैसे यह स्पष्ट हो जाता है, जैसे जैसे वह देरी करता है, जैसे जैसे यह स्पष्ट होता जाता है कि मसीह तुरंत वापस नहीं आ रहा है, चर्च मसीह के जल्द लौटने की उनकी उम्मीद पृष्ठभूमि में फीकी पड़ने लगती है, और फिर वे दुनिया में जीवन जीने के लिए बसना शुरू कर देते हैं। प्रारंभिक कैथोलिक धर्म की एक और विशेषता जो इसके साथ चलती है वह है चर्च का संस्थागतकरण, अर्थात जैसे ही चर्च दुनिया में बसना शुरू करता है और लंबे समय के लिए एक तरह से बस जाता है और महसूस करता है कि मसीह तुरंत वापस नहीं आ रहा है, तो वहाँ एक है चर्च को डीकन और बिशप तथा पदानुक्रम आदि के साथ अधिक संस्थागत और अधिक संरचित बनाने की आवश्यकता है। तीसरा है विश्वास का क्रिस्टलीकरण। अब एक निश्चित प्रकार की मान्यताओं की आवश्यकता है जिसे चर्च अब धारण करेगा और उसकी सदस्यता लेगा, और इसलिए ऐसा सोचा गया है कि ये तीनों दो पीटर में पाए जा सकते हैं। इसलिए तर्क यह है कि यदि ये तीनों विचार, जहां भी आप इन विचारों को देखते हैं, यदि वे एक ऐसे चर्च का संकेत देते हैं जो कुछ समय के लिए पहली शताब्दी के अंत में, दूसरी शताब्दी में, और यदि ये सभी दो में पाए जाते हैं पीटर, तो यह एक बात का दस्तावेज होना चाहिए जिसे पीटर स्वयं नहीं लिख सका या उसने नहीं लिखा। दोबारा मैं इसमें नहीं जाना चाहता, लेकिन नंबर एक, मैं वास्तव में सवाल करूंगा कि क्या चर्च ने वास्तव में इसमें काफी बदलाव किया है। वास्तव में मुझे लगता है कि नंबर एक, मुझे संदेह है कि पहला मामला अनिवार्य रूप से ऐसा ही है। मुझे ऐसा लगता है कि पूरे पुराने नियम और नए नियम में आप ईश्वर की वापसी में देरी और आसन्नता दोनों को एक दूसरे के साथ संतुलित पाते हैं। हम पहले ही देख चुके हैं कि पॉल और दो थिस्सलुनीकियों में सोचता था कि देरी हो सकती है, कि मसीह तुरंत वापस नहीं आ सकता है। याद रखें, उसने थिस्सलुनीकियों को चेतावनी दी थी कि वे यह न सोचें कि वे पहले से ही प्रभु के दिन में हैं। तो मेरे लिए ऐसा नहीं लगता है कि इनमें से कुछ दस्तावेजों में, जिन्हें बहुत बाद का माना जाता है, ऐसा नहीं लगता है कि ईसा मसीह की शीघ्र वापसी आवश्यक रूप से दृष्टि से ओझल हो गई है। और ये दोनों मुझे उनकी उपस्थिति से अधिक विस्तार का मामला लगते हैं, क्योंकि फिर से मुझे लगता है कि आप नए नियम के कुछ शुरुआती दस्तावेजों में चर्च के संस्थागतकरण और विश्वास के क्रिस्टलीकरण दोनों को पा सकते हैं। इसलिए मुझे सचमुच संदेह है कि इनमें से किन्हीं तीन की मौजूदगी यह बताने के लिए पर्याप्त है कि यह दस्तावेज बहुत बाद का होना चाहिए। तो निष्कर्ष में मुझे ऐसा लगता है कि वास्तव में, हालांकि दो पीटर एक कठिन पुस्तक है जहां तक यह प्रदर्शित करना है कि पीटर ने निश्चित रूप से इसे लिखा है, मुझे नहीं लगता कि इस पर सवाल उठाने का वास्तव में कोई अच्छा कारण है। उदाहरण के लिए, पीटर अपना वसीयतनामा क्यों नहीं लिख सका? अन्य कारण भी हो सकते हैं कि दो पीटर एक पीटर से इतना अलग क्यों दिखता है, लेकिन वास्तव में इस बात के लिए पर्याप्त सबूत नहीं है कि निश्चित रूप से 100% निश्चित हो कि पीटर ने इसे लिखा है, लेकिन इस बात से इनकार करने के लिए वास्तव में कोई अच्छा सबूत नहीं है कि उसने इसे भी लिखा है। प्रारंभिक चर्च की गवाही यह थी कि पीटर ने वास्तव में इसे लिखा था। तो मैं इस धारणा के साथ काम करने जा रहा हूं कि पीटर, यीशु प्रेरित, वही व्यक्ति जिसने एक पीटर को लिखा था, उसने यह पुस्तक भी लिखी थी। हाँ, आप सही हैं, यह एक और मुद्दा है। हमारे पास जो है उससे भी कम है। मूलतः हमारे पास केवल एक और दो पत्रस हैं। हमारे पास वास्तव में यह कहने के लिए पर्याप्त नहीं है कि पीटर यह नहीं लिख सकता था। याद रखें, हमने कहा था कि पॉल के पत्रों के साथ आंकड़े भी कठिन हैं। हालांकि हमारे पास पॉल के कई पत्र हैं, फिर भी निश्चित रूप से यह निष्कर्ष निकालने के लिए पर्याप्त पत्र नहीं है कि पॉल ने हमेशा इसी तरह लिखा था या पॉल इस तरह नहीं लिख सकता था। इसलिए शायद पीटर के बारे में और भी कम निश्चितता है, क्योंकि हमारे पास मूलतः एक और दो पीटर ही हैं, जहां तक बात है कि पीटर ने कैसे लिखा होगा या लिख सकता था। ठीक है, अगली पुस्तक में एक प्रकार के परिवर्तन के रूप में, जिसे अब हम अंतिम पुस्तक के आगे छोड़ देंगे, जो न्यू टेस्टामेंट की अंतिम पुस्तक है, और वह जूड है। लेकिन एक प्रकार के परिवर्तन के रूप में दिलचस्प बात यह है कि जब आप दो पीटर और जूड की तुलना करते हैं, तो आपको जल्द ही कई समानताएं दिखाई देती हैं। समानताएं अक्सर मैथ्यू, मार्क और ल्यूक के समान सहमति की सीमा तक होती हैं। विचारों में समानता है। दो पीटर और जूड के कुछ खंडों के बीच शब्दावली और शब्दों में भी समानता है। समानताएं इतनी अधिक हैं कि हमें यह सवाल उठाना होगा कि दो पीटर और जूड के बीच क्या संबंध हो सकता है। इसमें संदेह है कि वे महज संयोग हैं। सबसे अधिक संभावना है कि किसी प्रकार का कोई रिश्ता हो। या तो दो पीटर और जूड एक समान परंपरा या समान कहानियां उधार ले रहे थे जो उन दोनों के पास थीं, या उनमें से एक दस्तावेज उधार लिया गया था और दूसरे के बारे में पता था। फिर मैं बहुत अधिक विस्तार में नहीं जाना चाहता, लेकिन ऐसा लगता है कि आम तौर पर मुझे लगता है अब जिस बात पर अधिक सहमति बन रही है वह यह है कि संभवतः जूर पहले लिखा गया था और दो पीटर ने फिर जूर का अधिकांश उपयोग किया। वास्तव में आपको जूर के बारे में बहुत कुछ दो पीटर में मिलता है, लेकिन दो पीटर में बहुत सारी सामग्री जूर में नहीं है। सबसे अधिक संभावना है दो पीटर या दो पीटर के लेखक के पास जूर तक पहुंच थी और उसने जूर का उपयोग किया, या कम से कम उसके पास जूर के पास मौजूद कहानियों के ठीक उसी संग्रह तक पहुंच थी और फिर उन कहानियों का उपयोग किया और फिर अपना खुद का जोड़ा सामग्री भी। मेरा सुझाव है कि संभवतः जूर पहले लिखा गया था और फिर दो पीटर ने जूर का उपयोग किया, लेकिन अन्य सामग्री का। फिर यह संभव है कि यह दूसरा तरीका भी हो सकता है कि जूर ने दो पीटर से उधार लिया होगा और इससे समानताएं स्पष्ट होंगी। कठिनाई यह है कि उस पढ़ने पर आपको यह समझाने में थोड़ी अधिक कठिनाई हो सकती है कि जूर क्यों लिखा जाएगा यदि यह दो पीटर से इतना मिलता जुलता है, लेकिन फिर पीटर का बहुत सा हिस्सा छोड़ देता है। यहूदा पत्रस का केवल एक भाग क्यों उठाएगा और उसके शेष भाग का अनुसरण क्यों नहीं करेगा, जबकि दूसरे तरीके से यह थोड़ा और अधिक समझ में आता है, यह कहना कि पीटर ने जूड का पूरा उपयोग किया लेकिन फिर वह विस्तार करना चाहता था और अपनी खुद की कुछ सामग्री जोड़ना चाहता था। लेकिन फिर आप देख सकते हैं कि नए नियम में किताबें जिस क्रम में हैं वह आवश्यक रूप से उस क्रम का संकेतक नहीं है जिसमें वे लिखी गई थीं। लेकिन फिर आम दृष्टिकोण यह प्रतीत होता है कि पहले जूड लिखा गया था और फिर दो पत्रस, लेकिन निश्चित रूप से यह अभी भी दूसरा तरीका हो सकता है। अब अगला स्पष्ट प्रश्न यह है कि यहूदा की पुस्तक क्यों? सबसे पहले केवल एक प्रश्न उठाने के लिए, यह जरूरी नहीं कि यह आपके नोट्स में हो, लेकिन बस थोड़ा सा सोचने के लिए, जूड जैसी किताब को न्यू टेस्टामेंट में क्यों शामिल किया जाएगा, विशेष रूप से चूंकि इसका बहुत सारा हिस्सा पहले से ही है। जैसा कि हमने कहा, यह पहले से ही दो पीटर में है। आप दो पीटर में पहले से ही जूड में लगभग सब कुछ पा सकते हैं। जूड जैसी किताब क्यों होगी? जैसा कि हम एक क्षण में देखने जा रहे हैं, जूड सबसे अजीब किताबों में से एक है जिसे आपने कभी पढ़ा है, कम से कम मैंने न्यू टेस्टामेंट में कभी पढ़ा है। मैं सोचता था कि रहस्योद्घाटन अजीब था और यह अभी भी कुछ मायनों में है, लेकिन जूड के पास इसमें कुछ बहुत ही अजीब सामग्री है। दरअसल सुनो, हम इसके बारे में और बात करेंगे, लेकिन जूड इसी तरह लिखते हैं। वह कहता है, अब मैं तुम्हें याद दिलाना चाहता हूँ, यद्यपि तुम्हें पूरी जानकारी है कि प्रभु जिसने एक बार मिस्र देश से लोगों को बचाया था, बाद में उन लोगों को नष्ट कर दिया जो विश्वास नहीं करते थे, और जिन स्वर्गदूतों ने अपना स्थान नहीं रखा परंतु अपना उचित निवास छोड़ दिया, उसने उन्हें उस बड़े दिन के न्याय के लिए अनंत और गहरे अंधकार में रखा है। इसी प्रकार सदोम और अमोरा और आसपास के नगर भी जिस प्रकार व्यभिचार में लिप्त और अप्राकृतिक लालसाओं में लिप्त रहते हैं, वे एक उदाहरण के रूप में काम करते हैं। फिर भी उसी प्रकार इन स्वप्न देखने वालों ने भी शरीर को अशुद्ध किया, अधिकार को अस्वीकार किया और महिमामय लोगों की निंदा की। लेकिन जब महादूत माइकल ने शैतान से झगड़ा किया और मूसा के शरीर के बारे में विवाद किया, तो उसने उसके खिलाफ आरोप लगाने की हिम्मत नहीं की। दुनिया में वह किस बारे में है? और जूड के इस पूरे खंड में इस तरह की कुछ अजीब कहानियां हैं। तो इसकी संक्षिप्तता के कारण, इस तथ्य के कारण कि इसका अधिकांश भाग पहले से ही दूसरे पीटर में है, आपको क्यों लगता है कि इस तरह की पुस्तक को न्यू टेस्टामेंट कैनन में स्वीकार किया गया होगा? और मुद्दे का एक हिस्सा यह है कि जूड कौन है? मैंने यह सुना, किसी ने यह कहा, एलिसन करेंगे, यीशु का भाई। जूड यीशु के भाइयों में से एक है। शायद यही एक कारण है कि जूड ने इसे न्यू टेस्टामेंट कैनन में शामिल किया, जो कि जेम्स की तरह था, जो यीशु का भाई है। जूड यीशु के रिश्तेदार हैं, यीशु के भाइयों में से एक होने के नाते यह संभावना है कि उनकी पुस्तक को नए नियम में शामिल करने के लिए विचार किया जाएगा। बहुत अच्छा। अब जूड का उद्देश्य, फिर जूड का स्वाभाविक रूप से, क्योंकि इसमें दूसरे पीटर के समान ही सामग्री है, हालांकि आप संबंध को समझते हैं, स्वाभाविक रूप से जूड भी एक एंटीनोमिनिज्म प्रकार की शिक्षा का मुकाबला करता हुआ प्रतीत होता है, जैसा कि दूसरे पीटर के साथ सच था। यह फिर से सिखा रहा है कि कोई भी व्यक्ति सभी प्रकार की यौन अनैतिकता का अनुसरण कर सकता है और किसी भी प्रकार की इच्छाओं और सुखों में लिप्त हो सकता है जो वह बिना किसी जिम्मेदारी के या बिना किसी अधिकार के चाहता है। ऐसा लगता है कि यहूदा के पीछे झूठे शिक्षकों का दिल है। फिर भी यह फिर से सवाल है कि जूर को कहां लिखा गया था, जूर को किसके लिए लिखा गया था, सटीक पाठक कौन हैं, वे कहां थे और इस शिक्षण की प्रकृति क्या थी। कुछ ने गूढ़ज्ञान प्रकार की शिक्षा का सुझाव दिया है, मुझे पता नहीं है। यह अधिक हद तक यहूदी प्रकार का हो सकता था, हालांकि यह देखना कठिन होगा कि वे उस प्रकार की जीवन शैली को बढ़ावा क्यों दे रहे हैं जिसके बारे में आप स्पष्ट रूप से पढ़ते हैं। जो श्लोक मैंने अभी पढ़ा उसमें उन्होंने कहा, फिर भी उसी तरह ये स्वप्न देखने वाले, जो शिक्षकों के लिए जूड का लेबल है, ये स्वप्न देखने वाले भी शरीर को अशुद्ध करते हैं, अधिकार को अस्वीकार करते हैं और गौरवशाली लोगों की निंदा करते हैं। इसलिए मैं बिल्कुल निश्चित नहीं हूं कि शिक्षक कौन थे या वे कहां स्थित रहे होंगे, लेकिन सबसे अच्छी तरह से हम जूड को पढ़ने से बता सकते हैं, फिर से दूसरे पीटर के शिक्षकों की तरह वे सवाल कर रहे थे, वे आवश्यकता पर सवाल उठा रहे थे, जिम्मेदारी से जीना और इसके बजाय एक एंटीनोमिनिज्म को बढ़ावा देना जो बिना किसी अधिकार के तहत रह रहा है, सभी वासनाओं और सुखों में लिप्त है जो कोई चाहता है, और परिणाम के रूप में निर्णय या उस जैसी किसी भी चीज के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि जूड इसी को संबोधित कर रहा है जो दूसरे पत्रस के बिल्कुल समान है। हालांकि जूड में यह उतना स्पष्ट नहीं है कि वे आने वाले फैसले या उस जैसी किसी चीज से इनकार कर रहे हैं। दूसरे जूड में भी जूड संबोधित कर रहे होंगे जब आप आरंभिक ईसाई धर्म में नए नियम के बाहर भी बहुत सारे दस्तावेज पढ़ना शुरू करते हैं, तो आरंभिक चर्च को जिन समस्याओं का सामना करना पड़ा उनमें से एक तरह के यात्रा करने वाले प्रचारकों और व्यक्तियों के समूह थे जो दयालु होंगे। एक शहर से दूसरे शहर जाना और विभिन्न शिक्षाओं का प्रचार करना और वास्तव में ऐसी चीजें सिखाना जो जूड में पाई जा सकती हैं। तो कुछ संदेह है कि जूड, जिसे भी वह संबोधित कर रहा है, कि उसके पाठक इन घुमंतु प्रचारकों के अधीन हो सकते हैं जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूम रहे हैं और इस एंटीनोमियन विचार के इस विचार को पढ़ाते हैं जिसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं है। मेरा मतलब है, हमें निर्णय के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है और कोई व्यक्ति जैसे चाहे जी सकता है और अपनी पसंद के सभी सुख प्राप्त कर सकता है। और इसलिए दूसरे पत्रस की तरह जूड अपने पाठकों को ऐसा न करने के लिए मनाने के लिए उस पर प्रतिक्रिया देने जा रहा है। इसलिए उदाहरण के लिए श्लोक तीन में यहूदा का उद्देश्य श्लोक तीन में संक्षेप में प्रस्तुत किया गया प्रतीत होता है, प्रिय, जबकि हम उत्सुकता से आपके साथ साझा किए गए उद्धार के बारे में लिखने की तैयारी कर रहे हैं, जिससे पता चलता है कि यहूदा स्पष्ट रूप से बैठकर एक पत्र लिखने वाला था, लेकिन अब यह जानकारी मिली है जो परेशान करने वाली है और अब वह पाठ्यक्रम बदलकर कुछ और लिखने जा रहे हैं। तो यह कहता है, प्रिय, हम जिस मुक्ति को साझा करते हैं उसके बारे में आपको लिखने के लिए उत्सुकता से तैयारी करते हुए मुझे लिखना आवश्यक लगता है और आपसे उस विश्वास के लिए संघर्ष करने की अपील करता हूँ जो एक बार सभी के लिए संतों को सौंपा गया था। ऐसा लगता है कि यह जूड के उद्देश्य को संक्षेप में प्रस्तुत करता है। वह चाहता है कि वह आस्था के लिए संघर्ष करे, लेकिन वह यह स्पष्ट कर देगा, जैसा कि हम पत्र में देखेंगे, वह जिस आस्था की बात करता है वह न केवल किसी आस्था के लिए सहमति है बल्कि इसका इससे सब कुछ लेना देना है, उनकी नैतिकता और उनके रहने का तरीका भी। तो फिर जूड झूठी शिक्षा की इस समस्या का समाधान करने के लिए लिखता है। शायद ये घुमंतू शिक्षक जो इस एंटीनोमिनिज्म को पढ़ा रहे हैं उन्हें चेतावनी देते हैं कि वे इसके आगे न झुकें, बल्कि इसके बजाय धार्मिक, नैतिक और नैतिक रूप से उस विश्वास के लिए संघर्ष करें जो उन्हें दिया गया है। अब जिस तरह से जूड ऐसा करता है, और यह मुझे लगता है आप पत्र को कैसे समझते हैं, मूल रूप से जिस तरह से जूड ऐसा करेगा, जिस तरह से वह उन्हें इस एंटीनोमियन प्रभाव का विरोध करने और विश्वास के लिए संघर्ष करने के लिए प्रेरित करेगा, क्या वह अध्याय दो में दो पत्रस की तरह कई कहानियां सुनाएगा? और इन सभी कहानियों में दो बातें समान हैं। नंबर एक, वे पुराने नियम से आते हैं। तो जूड की लगभग पूरी किताब पुराने नियम की कहानियों की बस यही सूची है। नंबर दो, उन सब का संबंध इस बात से है कि ईश्वर बुरे और दुष्ट व्यवहार, विशेषकर अनैतिकता का न्याय करता है। इसलिए उदाहरण के लिए सबसे पहले जिस पर हमने गौर किया वह श्लोक पांच से शुरू होता है। श्लोक पांच और यहूदा के पास केवल एक अध्याय है, इसलिए कोई अध्याय एक, अध्याय दो नहीं है, यह सभी छंद हैं। तो पद पांच शुरू होता है, अब मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, हालांकि आप पूरी तरह से सूचित हैं, कि प्रभु जिसने एक बार लोगों को मिस्र से बाहर निकाला बाद में उन लोगों को नष्ट कर दिया जो विश्वास नहीं करते थे। इसलिए यद्यपि उसने अपने लोगों को मिस्र से बचाया, उनके विद्रोह और अवज्ञा के कारण उसने उन्हें तब नष्ट कर दिया जब वे रेगिस्तान में भटक रहे थे, और उसने मूल रूप से उन्हें मार डाला और एक नई पीढ़ी को खड़ा किया जो अब वादा किए गए देश में प्रवेश करेगी। तो यहूदा कह रहा है, उसी तरह भले ही भगवान ने अपने लोगों को, जिन्हें उन्होंने मिस्र से बाहर निकाला, विद्रोह के कारण नहीं छोड़ा, तो वह आगे कहते हैं, और स्वर्गदूत जिन्होंने अपना पद बनाए नहीं रखा परंतु उनके उचित निवास को छोड़कर उसने अनंत जंजीरों और न्याय में रखा है। परंतु यह उसी प्रकार सदोम और अमोरा और आसपास के नगर जो उनके समान ही यौन अनैतिकता में लिप्त थे और अप्राकृतिक वासनाओं का पीछा करते थे, अनंत आग की सजा भुगतने के द्वारा एक उदाहरण के रूप में काम करते हैं। यह वास्तव में जेम्स के उदाहरणों का सार प्रस्तुत करता है कि वह उन लोगों का उदाहरण दे रहा है जिन्होंने पुराने नियम में विद्रोह किया है, विशेष रूप से अनैतिकता के क्षेत्र में, और फिर भगवान ने उनका न्याय किया है। तो फिर निहितार्थ यह है कि पाठकों को इन गैर विरोधी झूठे शिक्षकों के आगे झुकने के प्रति सचेत रहना चाहिए, क्योंकि यदि परमेश्वर ने अतीत में न्याय किया है तो वह निश्चित रूप से कर सकता है और वह निश्चित रूप से फिर से ऐसा करेगा, उसी प्रकार के व्यवहार के लिए जिसके लिए पुराने नियम में लोगों का न्याय किया गया था। यही उनका पूरा तर्क है। हालांकि आप नोट्स में देखेंगे कि मैंने आपको कुछ दिलचस्प उदाहरण दिए हैं जो काफी दिलचस्प हैं। पद छह में उन स्वर्गदूतों के बारे में क्या जिन्होंने अपने अधिकार का पद बरकरार नहीं रखा? इस उदाहरण को हम पहले ही एक पत्रस में देख चुके हैं। मैंने सुझाव दिया कि एक पत्रस तीन परिच्छेद को याद रखें जिस पर हमने कुछ समय बिताया था। ईसा मसीह का जेल में आत्माओं के पास जाने का यह विचार, जिन्होंने नूह के दिनों में विद्रोह किया था, और अब हम जेल में हैं और न्याय की प्रतीक्षा कर रहे हैं। यह संभवतः यहूदी साहित्य की इस परंपरा से आता है जिसमें उत्पत्ति अध्याय 6 की व्याख्या की गई है, ईश्वर के पुत्र जो नीचे आए और पुरुषों की बेटियों के साथ संबंध बनाए, उन्होंने ईश्वर के पुत्रों की व्याख्या देवदूत प्राणियों के रूप में की, जो अब यहूदी साहित्य के अनुसार, जो अब वे जेल में हैं, जंजीरों में जकड़े हुए हैं और फैसले के दिन का इंतजार कर रहे हैं। और अब मुझे लगता है कि दो पीटर वही कहानी दोहरा रहा है। दो पत्रस पद 6 उसी कहानी को थोड़े अलग शब्दों में दोहराता है, जैसा कि हमने एक पत्रस अध्याय 3 में पाया था। इसलिए दो पत्रस पद 6 फिर उत्पत्ति अध्याय 6 की ओर संकेत करता है, जैसा कि यहूदी साहित्य में व्याख्या की गई है, जो इसे देवदूत प्राणियों के रूप में पढ़ता है, जिन्होंने उल्लंघन किया, जिन्होंने त्याग दिया उनकी स्थिति और भगवान की सीमाओं का उल्लंघन किया गया, और इसलिए उन्हें न्याय के अंतिम दिन की प्रतीक्षा में जंजीरों में बंद कर दिया गया। और पीटर फिर से उस ओर इशारा करता है, और जाहिर है यह एक बहुत अच्छा उदाहरण है कि वह क्या साबित करना चाहता है, कि उनके अनैतिक कार्य या उनके कार्य जो प्राधिकरण को विफल करते हैं, वास्तव में गंभीर परिणाम होते हैं, वह निर्णय है। लेकिन श्लोक 9 में इस श्लोक के बारे में क्या जो हमने अभी पढ़ा है? लेकिन जब महादूत माइकल ने शैतान से झगड़ा किया और मूसा के शरीर के बारे में विवाद किया, तो उसने उसके खिलाफ निंदा या बदनामी करने की हिम्मत नहीं की, परंतु उसने कहा, यहोवा तुम्हें डांटे। अब मेरा प्रश्न यह है कि वह दुनिया में किसकी बात कर रहा है? सबसे पहले आप पुराने नियम में मूसा की मृत्यु के बारे में कहां पढ़ते हैं? क्या किसी को याद है कि वह कहां है? या बस मोटे तौर पर? हाँ, व्यवस्था विवरण के अंत की ओर। वास्तविक मृत्यु के बारे में बहुत कुछ नहीं पढ़ते हैं, या मूसा के दफनाने या उसके जैसी किसी चीज के बारे में कुछ भी नहीं पढ़ते हैं। लेकिन मैं आपको व्यवस्था विवरण पढ़ने, पूरा पुराना नियम पढ़ने और इस कहानी को वहां कहीं भी खोजने की चुनौती दूंगा। यह वहां नहीं है, कहीं भी कोई उल्लेख नहीं है, विशेष रूप से व्यवस्था विवरण में महादूत माइकल का कहीं भी कोई उल्लेख नहीं है। आपने उसके बारे में पुराने नियम में पढ़ा, आपने उसके बारे में प्रकाशित वाक्य और कुछ अन्य यहूदी साहित्य में पढ़ा, लेकिन आपको पुराने नियम के व्यवस्था विवरण में कहीं भी महादूत माइकल की यह कहानी नहीं मिलेगी कि वह मूसा की मृत्यु के बाद उसके शरीर पर शैतान के साथ विवाद कर रहा था। वह आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो सवाल यह है कि जूर दुनिया में क्या कर रहा है? क्या उसने इसे बनाया? या क्या हम पुराने नियम का कुछ हिस्सा खो रहे हैं? अथवा उसे यह कहां से मिलता है? दरअसल एक यहूदी कार्य है जो पुराने नियम या नए नियम में नहीं है। हम पहले ही टेस्टामेंट और टेस्टामेंटरी साहित्य जैसे अब्राहम का टेस्टामेंट और इसहाक का टेस्टामेंट का उल्लेख कर चुके हैं। हमने कहा कि दो पत्रस और दो तीमुथियुस एक वसीयतनामा के समान हैं। हमारे पास मूसा का वसीयतनामा नामक एक कार्य है। उस समय के आसपास लिखे गए कुछ अन्य साहित्य के अनुसार एक समय में मूसा के वसीयतनामा का एक अंत था जो अब स्पष्ट रूप से खो गया है, एक अंत जिसमें मूसा के शरीर पर शैतान के साथ महादूत माइकल के विवाद की कहानी थी। इसमें वही सटीक कहानी थी। तो सबसे अधिक संभावना है जूड शायद न केवल पुराने नियम पर भरोसा कर रहा है, बल्कि कुछ कहानियों और कुछ तरीकों से अन्य यहूदी साहित्य ने पुराने नियम की व्याख्या की है। पुनः व्यवस्था विवरण पर जाएं। आपको वह या संपूर्ण पुराना नियम कभी नहीं मिलेगा। आपको मूसा के शरीर को लेकर शैतान के साथ विवाद करने वाले महादूत माइकल की वह कहानी कहीं भी नहीं मिलेगी। लेकिन जाहिरा तौर पर यह एक काम में था, जिसे फिर से मूसा का टेस्टामेंट कहा जाता है कि आप वास्तव में इसका अंग्रेजी अनुवाद पढ़ सकते हैं। लेकिन यह कहानी आपको नहीं मिलेगी क्योंकि जाहिर तौर पर यह खो गई है। लेकिन उस समय के दौरान लिखे गए अन्य साहित्य हमें बताते हैं कि एक समय में मूसा के वसीयतनामा का स्पष्ट रूप से यह अंत था, जिसमें शैतान और महादूत माइकल के बीच विवाद और बहस के बारे में यह कहानी थी कि मूसा के शरीर के साथ क्या किया जाए। और जब तक कोई अन्य सबूत सामने नहीं आता, सबसे अधिक संभावना यही है कि जूर को यह बात कहां से मिली। लेकिन फिर अधिक महत्वपूर्ण बात, जैसा कि मैंने कहा, इन सभी कहानियों के उद्देश्य और कार्य को समझना है। भले ही उनमें से कुछ हमारे लिए थोड़ी अजीब और समझने में कठिन हो, इन सभी का समग्र कार्य जूर की कहानियां यह प्रदर्शित करने के लिए हैं कि जिस तरह से भगवान ने अतीत में बुराई और दुष्टता का न्याय किया है, वह फिर से ऐसा ही करेगा। इसलिए पाठकों को वह सब कुछ करने की जरूरत है जो वे इस एंटीनोमियन शिक्षण में नहीं दे सकते। लेकिन इसके बजाय, जैसे ही जूर पद 24 में समाप्त होता है, जूर की अंतिम पुकार अब उसे है जो आपको गिरने से बचाने में सक्षम है, अर्थात उस विश्वास से दूर हो जाना जिसके लिए उन्हें संघर्ष करना है, जिसमें उनकी आज्ञाकारिता, उनकी नैतिकता और उनकी पवित्रता शामिल है। अब उसे जो तुम्हें गिरने से बचा सकता है और अपनी महिमा के सम्मुख आनंद के साथ निर्दोष खड़ा कर सकता है, तो पाठकों के लिए यही उनका लक्ष्य है। वे इन एंटीनोमियन शिक्षकों के आगे झुकते नहीं हैं, बल्कि वे बुराई और दुष्टता का न्याय करने वाले परमेश्वर के पुराने नियम के इन उदाहरणों को दिल से लेते हैं और इसके बजाय वे पवित्रता का अनुसरण करते हैं। अर्थात उनकी नैतिकता और उनकी पवित्रता शामिल है, और इसलिए न्याय में परमेश्वर के सामने खड़े होने के बजाय वे एक दिन उसकी उपस्थिति और उसकी महिमा में दोषरहित खड़े होंगे। ठीक है, जूर के बारे में कोई प्रश्न? मेरे पास एक बहुत छोटी किताब है। क्या कभी किसी ने यहूदा पर उपदेश देते हुए सुना है? मुझे नहीं लगता कि मैंने कभी ऐसा किया है। जब आप किताब पढ़ते हैं तो आप समझ सकते हैं कि ऐसा क्यों है। कुछ चीजें मुझे निश्चित नहीं है कि क्या करूं, लेकिन कुल मिलाकर मुझे लगता है कि इसका संदेश बिल्कुल स्पष्ट है। हाँ, प्रश्न? तो फिर दोनों क्यों हैं? पीटर और जूर के पास क्यों है? हाँ, ठीक है, मुझे लगता है कि जूर को शामिल करने का प्राथमिक कारण मुख्य रूप से जूर के यीशु के भाई होने के प्रमाण पत्रों में था। लेकिन फिर मुझे लगता है कि व्यापक कैनन के भीतर यह जो काम करता है, उनमें से एक इस संदेश को सुदृढ़ करना है कि चर्च एंटीनोमिनिज्म और अधिकार की अस्वीकृति और अवज्ञा को बर्दाश्त नहीं करेगा, लेकिन उन्होंने इसे गंभीरता से लिया है, और यह कि परमेश्वर के लोगों को पवित्रता का अनुसरण करने और पवित्रता का जीवन जीने के लिए बुलाया गया है, ताकि जब यहूदा का अंत हो तो हम उसके क्रोध और न्याय का सामना करने के बजाय परमेश्वर की उपस्थिति में बिना किसी दोष के खड़े रहें। इसलिए मुझे लगता है कि यह कमोबेश पीटर द्वारा किए गए कार्यों को थोड़े अलग तरीके से पुष्ट करता है। लेकिन मुख्य रूप से मुझे लगता है कि इसका अधिकांश हिस्सा यीशु के भाई के रूप में जूर की प्रशंसा पर था, जिसने यह सुनिश्चित किया कि यह नए नियम में आएगा। अच्छा, ठीक है। अरे, आपका सप्ताहांत मंगलमय हो, और मैं तुमसे सोमवार को मिलूंगा। वैसे अगले गुरुवार, अभी मैं आपको निश्चित रूप से एक ईमेल भेजूंगा, लेकिन अगले गुरुवार को मैं एक अतिरिक्त सत्र आयोजित करने की योजना बना रहा हूँ। एक और अतिरिक्त क्रेडिट समीक्षा सत्र होगा। यह न्यू टेस्टामेंट हिस्ट्री एंड लिटरेचर में डॉक्टर डेव मैथ्यूसन थे, 2 पीटर और जूड पर व्याख्यान संख्या 32।